समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर दैनिक कार्यक्रम आज सवेरे का आगाज करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे कार्यक्रम के इस अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
And a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode, the Friday episode of Aaj Savere. और भाई अब तो सर्दियों का आगमन कह सकते हैं, दिख रहा है फिजा में और मेरी आवाज में भी। So that's how we can say that the winters are just on the, you can say, on the anvil. And yes, in today's show, as always, we'll bring you some national and international news. Apart from that, in the Metro News section, जानेंगे क्या कुछ खास हो रहा है आपके अपने शहर में, in our Metro City updates. And of course, the last segment, जिसका आप सबको इंतजार रहता है, and even we like doing that segment the most, in which we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today. और आज तो एक बहुत ही मशहूर शायर का हम लोग याद करेंगे, मशहूर शायर को। उनकी तो शायरी इतनी अलग थी अपने ज़माने में कि रूमानी भी थी और इनकलाबी भी थी। तो ये काफ़ी हिंट है आप लोग के लिए टू कीप गेसिंग हु इज़ दैट पोएट। All of that in the next roughly half an hour. But first, let's start with the headlines.
चक्रवाती तूफान दाना अब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात कल आधी रात लगभग भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच ओडिशा तट से टकराया। भुवनेश्वर मौसम कार्यालय के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसके असर से केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में तेज वर्षा हुई। मयूरभंज, कटक, जाजपुर, बालेश्वर और जगत सिंहपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में भी तेज वर्षा हो रही है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी ऑन अ टू डे विजिट टू छत्तीसगढ़ बिगिनिंग टुडे। शी विल ग्रेस द सेकंड कॉन्वोकेशन ऑफ एम्स रायपुर टुडे। President Murmu will also grace the 14th convocation of NIT Raipur and visit the Purkhoti Muktangan at Naya Raipur. Tomorrow, the President will grace the 4th convocation of IIT Bhilai. She will also grace the 3rd convocation of Pandit Deen Dayal Upadhyay Memorial Health Science and Ayush University of Chhattisgarh at Raipur. Justice Sanjeev Khanna has been appointed as the next Chief Justice of India CJI. Law Minister Arjun Ram Meghwal said in a tweet that President Draupadi Murmu, after consultation with CJI D.Y. Chandrachur, has appointed Justice Khanna as CJI with effect from 11th of November. Justice Khanna is currently the second senior-most judge of the Supreme Court. He will become the 51st Chief Justice of India. Justice Khanna is due to retire on 13th May 2025.
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष न्यायालय के जन न्यायालय के रूप में सेवा करने का ये उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधान न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने आकाशवाणी से एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यक्रम करने की अपनी यादें भी दोहराई। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ये साक्षात्कार आकाशवाणी एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अपने 8 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अंतर सरकारी परामर्श की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री शोल्ज आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोनों नेता आज 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे।
Vice President Jagdeep Dhankar will be on a two-day visit to Karnataka starting today. On the first day of his visit, Mr. Dhankar will interact with students at the Adi Chunchangiri University in B.G. Nagara, Mandya, Karnataka. He will also visit Raj Bhavan in Karnataka.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल 37 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। अब तक 71 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए।
And the Ministry of Youth Affairs and Sports has invited applications for Sports Awards 2024. Sports Awards are given every year to recognize and reward excellence in sports. The Major Dhyan Chand Khel Ratna Award is given for spectacular and outstanding performance in the field of sports by a sportsperson.
और श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें जानने का। तो सबसे पहले सारा आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या है।
वेल, स्टार्ट करते हैं चेन्नई से। इन द फेज वन ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ द मेट्रो स्टेशन एट नांगानल्लूर एज ओटीए स्टेशन। According to the information given by the state government, the step was taken after a request made by the chief of staff of the region. The 26th meeting of the high-powered committee under the chairmanship of the chief secretary of the Tamil Nadu government approved renaming. IIT Madras Pravartak Technologies Foundation is partnering with French University to offer a two-year master's degree in aviation and safety management. The program is supported by Airbus to train safety managers and experts to improve and promote safety performance in various organizations in the air transport system. The first batch will have a maximum of 30 seats. Program will begin in January next year and the last date to register is the 15th of December. चेन्नई के बाद आप बताइए मुकेश के बम्बई की क्या खबर है।
बिल्कुल, बम्बई की खबरों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बई ने अपने बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और समग्र विकास के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य IIT बम्बई की स्थिति को नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस बीच मुंबई के राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 7,69,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के सोने के साथ दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों एक बड़े तस्करी रैकेट में शामिल थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि तस्करी के सोने के साथ वे पहचान छिपाकर यात्रा कर रहे थे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मुंबई विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने की पहल की है। विश्वविद्यालय के इन कार्यक्रमों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, चुनावी साक्षरता क्लब की स्थापना, मतदान शपथ, ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन और मतदाता शिक्षा के लिए व्यापक अभियान शामिल हैं।
Moving on to Bengaluru, the Indian Institute of Horticultural Research in Hesaraghatta near Bengaluru organized the industry meet in its campus. Dr. V.B. Patel, ADG in the Horticulture Division of ICAR in New Delhi, spoke on the need for a joint research and collaboration with private agencies in an effort to utilize the varieties, breeding lines and other technologies developed by ICAR for the benefit of the farmers. The CEO and Secretary of Coffee Board, Dr. K.G. Jagadish, called for sustained supply of healthy, residue-free and environment-friendly produce through public-private partnership. Two publications of the Indian Institute of Horticultural Research were released on the occasion and 5 MOUs with industry partners were signed for technology transfer.
और कोलकाता का रुख करते हैं तो कोलकाता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कल आकाशवाणी कोलकाता का दौरा किया। उन्होंने FM चैनलों के लिए रेडियो नीलामी कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय की सभी इकाइयों के साथ बैठक की। उन्होंने कोलकाता दूरदर्शन कार्यालय का भी दौरा किया।
मूविंग ऑन टू हैदराबाद, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज हेल्ड अ मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी और JAC of employees and announced the formation of a cabinet subcommittee to resolve issues raised by them. Deputy Chief Minister Bharti Vikramarka will serve as the chairman of the committee, with ministers Sridhar Babu and P. Prabhakar as members. Senior leader K. Keshav Rao will be a special invitee. An official release stated that the subcommittee will hold department-wise meetings to speed up solutions for employees' problems after Diwali. And what is the buzz from the national capital, Mukesh?
जी हाँ, दिल्ली की खबरों में, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कल से दिल्ली राज स्कूल खेल 2024-25 शुरू हो गए। दिल्ली राज स्कूल खेलों में 34 खेलों को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में पैरा एथलीट विद्यार्थियों के लिए 13 अलग अलग खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल हुए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में गोपाल राय ने प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए कहा। श्री राय ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। और सायरा, दीपावली और छठ पूजा पास में आ रही है, इसलिए रेल मंत्रालय ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2,00,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाई गई 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस वर्ष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो अपने घर जाते हैं त्योहार मनाने के लिए,
बिगेस्ट फेस्टिवल्स, आई थिंक दिवाली वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स, लोग साल भर कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कब दे गो बैक टू देयर होम टाउन टू सेलिब्रेट विद देयर लव्ड वंस। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी पहल है। अब मेरे ख्याल से किसी का भी नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं होगा,
नहीं होना चाहिए। और अब रुख करते हैं खेल जगत का। तो खेल जगत की खबरें लेकर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी निखिल। निखिल बताएं कि आज कहां से शुरुआत करेंगे।
मुकेश, शुरुआत करते हैं महिला क्रिकेट से। भारतीय टीम ने कल अहमदाबाद में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को 59 रन से हरा दिया। 228 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 40 ओवर और 4 गेंद में 168 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 विकेट और साइमा ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारतीय टीम ने 44 ओवर और 3 गेंद में 227 रन बनाए थे। तेजल हसबनीस ने 42 रन और दीप्ति शर्मा ने 41 रन की शानदार पारी खेली थी, तो दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ मैच चुना गया। अब हम कुश्ती की बात करें तो भारत ने कल रात अल्बानिया के तिराना में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारत की अंजलि ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। फाइनल में यूक्रेन की सोलिमिया विन्निक से हारने के बाद अंजलि दूसरे स्थान पर रही थी। 68 किलोग्राम भार वर्ग में मोनिका ने चीन की शिन जे डू को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले कल विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में एडम उल्बाशेफ को 14-10 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इस बीच हॉकी प्रशंसकों के लिए एक मायूसी भरी खबर है। महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। कजान में ओलंपिक क्वालिफायर 2008 में 14 साल की उम्र में पदार्पण करने वाली रानी ने 254 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए 120 गोल किए। वो हॉकी में सीनियर स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। रानी 2009 एशिया कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम में भी शामिल थी। हॉकी में रानी रामपाल के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में हॉकी इंडिया ने उनकी 28 नंबर जर्सी को रिटायर घोषित किया है। रानी रामपाल को 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा अंडर-17 भारतीय हॉकी टीम का कोच बनाया गया था। इस साल आगामी हॉकी इंडिया लीग में उन्हें सुरमा हॉकी क्लब का कोच और मेंटर भी नियुक्त किया है। तो मुकेश, ये थी खबरें खेल जगत से।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा के साथ। आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता का रुख करते हैं तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो सायरा, ये हुई बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम।
Well, if you talk about all these three southern cities, all of them will have a cloudy sky and some light rain is also expected in some of the cities. Chennai will have a thunderstorm with rain. Minimum temperature was 26, while maximum will be around 32 degrees Celsius. Bengaluru will have a cloudy sky with light rain expected during the day. Minimum temperature was 20, while maximum will be around 29 degrees Celsius. And in Hyderabad, there would be haze and a partly cloudy sky. The temperature in Hyderabad will hover between 21 and 32 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। आज 25 अक्टूबर है। आज ही के दिन 1924 में भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया था।
On this day in 1932, the Peerless Investment Company was established.
1951 की बात करें तो आज ही के दिन भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। 1962 में आज के दिन अमरीकी लेखक जॉन स्टीनबेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
And in 1964, the first indigenous tank was manufactured in Avri factory and it was named Vijayant.
और वर्ष 2000 में अंतरिक्षयान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल पृथ्वी पर वापस आया था।
Also on this day 1971, the National Science and Technology Committee was established. In 1989, P. Baiju, Anand Shetty, Arjun Devaiya, Anand Natarajan set a record for India at the 4x200 meters relay meet in 40.14 seconds at Islamabad.
और वर्ष 2005 में आज ही के दिन इराक में नए संविधान को जनमत संग्रह में बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी।
And on this day in 1997, 180 megawatt Lower Periyar hydroelectric project in Kerala was commissioned after 13 long years.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जयंती। तो सबसे पहले याद करते हैं हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक निर्मल वर्मा को, आज उनकी पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक निर्मल वर्मा का कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकारों में अग्रणी स्थान है। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन निर्मल वर्मा की चर्चित उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य 1990 में प्रकाशित हुआ था और उनकी 100 से अधिक कहानियां कई कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं।
Yes, in a career that spanned 5 decades and various forms of literature, writing story, travelogues and essays, he penned 5 novels, 8 short story collections and 9 books of non-fiction, including essays and travelogues. In fact, his first short story was for a student's magazine in the early 1950s, where he completed Masters of Arts in History from St. Stephen's College in Delhi. Thereafter, he started teaching in Delhi and started writing also for various literary magazines.
और उनके बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित की थी और 1958 में परिंदे कहानी से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा ने धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत भी लिखे, जिसने उनकी लेखन विधा को नए आयाम दिए।
We are also remembering another great writer of English literature. Yes, we are remembering Geoffrey Chaucer, a poet, author, and also he is best known for the Canterbury Tales. He has been called the father of English literature or even the father of English poetry. He was the first writer to be buried in what has since become to be called the Poet's Corner in Westminster Abbey. Chaucer also gained fame as a philosopher and astronomer, composing the scientific 8 treatises on the astrolabe for his 10-year-old son Lewis. He maintained a career in the civil service as a bureaucrat, a courtier and a diplomat, and also a member of parliament. Among Chaucer's many other works are The Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Women, and Troilus and Cressida. He is seen as crucial in legitimizing the literary use of Middle English. In fact, bahut se kam log jante honge that almost 2,000 English words, they were first attested to, you know, the Chaucerian manuscripts. That's quite a feat.
बिल्कुल। और अब याद करते हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी को, आज उनकी पुण्यतिथि है। साहिर ने जब लिखना शुरू किया तब इकबाल, फैज, फिराक आदि शायर अपनी बुलंदी पर थे, लेकिन उन्होंने अपना जो विशेष लहजा और रुख अपनाया उससे न सिर्फ उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली बल्कि वो शायरी की दुनिया पर छा गए।
That's true. In fact, his real name was Abdul Hai, but duniya unke takhallus ya pen name Sahir Ludhianvi ke naam se jaanti hai. And what an apt pen name, because zahir hai Sahir kehte hain magician ko, aur unhone waqai mein apne kalam se, apne shabdon se ek jadoo hi bikhera, na sirf hindi cinema mein, but he was a very good shayer of even the mushairas. To khaas taur se unki agar hum baat kare parchhaiyan jo unhone likhi hai ghazal, aur uska to kya hi kehna, mere khaas उसके चंद अशार हम लोग के पास है, isn't it?
बिल्कुल। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी उमान की सूरत, कभी यकीन की तरह।
Yes, इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि जवां रात के सीने पे दूधियां आंचल मचल रहा है किसी खाबे मरमरी की तरह, हसी फूल हसीन पत्तियां हसीन शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह, फजा में गुल से गए हैं उफुक के नर्म खतूत, जमी हसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं।
बिल्कुल, और साहिल लुधियानवी का 1921 में लुधियाना पंजाब की एक जागीरदार घराने में पैदा हुए थे। उनकी मां के अतिरिक्त उनके वालिद की कई पत्नियां भी थी, तो एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। और साहिल की शिक्षा लुधियाने के खालसा हाई स्कूल में हुई थी। 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे, अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ जो कि असफल रहा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेर और शायरी के लिए प्रख्यात हो गए थे।
Yes, in fact, the love story, or you can say the relationship of Amrita Pritam and Sahil Ludhianvi has been quite, you know, the talk of the town in those days and even today. But कहते हैं, like, you know, real life में थोड़ा सा Sahil Ludhianvi शायद commitment phobic थे, या यूं कह सकते हैं कि एक शायर अपने मिजाज से मजबूर होता है कि उसको आजादी पसंद होती है, बंधना नहीं पसंद होता। But it was more from Amrita Pritam's side, and उन्होंने भी बहुत ही remarkable steps लिए अपने समाज के खिलाफ। She left her marriage which she was enduring, which was very, you know, domestic violence se thi unki marriage, but she left all of that and pursued her dreams and was very open about her love for Sahir. And if we talk about Sahir's stint in the film industry, hum sab jante hain ki unhone lajawab gaane likhe. In fact, jo you can say Guru Dutt always preferred ke Sahil Ludhianvi ke hi gaane unki picture mein ho, Abrar Alvi ke hi dialogues ho, so this was the trio. Bilkul. You can say, and let's listen to a beautiful song from one of the films.
तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले क्यों डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों इंसान तेरे साथ इल्जाम उठा ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले
और 1943 में साहिर ने तलखियां नाम से अपनी पहली शायरी किताब प्रकाशित करवाई थी। तलखियां से साहिर को एक नई पहचान मिली। इसके बाद साहिर अदबे लतीफ, शाहकार और सवीरा के संपादक बने। साहिर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े। सवीरा में छपे कुछ लेख से पाकिस्तान सरकार नाराज हुई थी और साहिर के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। 1949 में साहिर दिल्ली चले गए। कुछ दिन दिल्ली में बिताने के बाद साहिर मुंबई आ गए थे और उन्होंने जो गाने लिखे हैं उसमें चौदहवीं का चांद का ये गाना अपने श्रोताओं को सुनवाए।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो।
एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज पर्सनैलिटी मुकेश, तो जैसे हर आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं जिसको दुनिया सनक बोले लेकिन उसको उसका शायराना टेम्परमेंट भी कह सकते हैं
जी।
तो पहले अगर आपको याद होगा कि हमेशा जो है धुन पहले बनती थी और शायर से या लिरिसिस्ट से कहा जाता था कि भाई ये धुन है इस पे तुम गाना लिखो। बट साहिर वॉज क्वाइट एडमेंट एंड ही इंसिस्टेड दैट द फिल्म स्कोर शुड बी कम्पोज फॉर हिज लिरिक्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड कि पहले मैं लिखूंगा अपने I'll let my thoughts go freely and then you have to compose the song according to my share. And he also insisted on being paid 1 rupee more than Lata Mangeshkar. And in fact, this also became a, you know, a cause of rift between them. But nonetheless, agar Sahir ka khalam ho aur us zamane ke singers ka agar awaaz ho to kya kehne.
Main zindagi ka saath nibhata chala gaya फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा बर्बादियों का सब मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।
1948 में फिल्म आजादी की राह पर से फिल्मों में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था और फिल्म ये जो थी वो असफल रही थी। साहिर को 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से प्रसिद्धि मिली। और इस फिल्म के संगीतकार एसडी बर्मन थे। गुरुदत्त के निर्देशन की पहली फिल्म बाजी ने उन्हें प्रतिष्ठित किया। इस फिल्म में भी संगीत बर्मन साहब का था। इस फिल्म के सभी गीत मशहूर हुए। साहिर ने सबसे अधिक काम संगीतकार एन दत्ता के साथ किया। दत्ता साहब साहिर के जबरदस्त प्रशंसक थे और 1955 में आई मिलाप के बाद मैरिन ड्राइव, लाइट हाउस, भाई बहन, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र और दिल्ली का दादा जैसी फिल्मों के गीत लिखे।
अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं।
और आज ही भारतीय हिंदी फिल्मों के अभिनेता और प्रसिद्ध हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की पुण्यतिथि है। जसपाल भट्टी सिर्फ हास्य कलाकार नहीं थे, बल्कि वो जीवन की विडंबनाओं पर चुटीली टिप्पणियां करने वाले सधे हुए व्यंग्यकार थे। महंगाई, भ्रष्टाचार, नेताओं की पाखंड या जीवन के दूसरे सवालों पर उन्होंने बहुत सधे हुए संवाद किए। 1980 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर उनके कार्यक्रम फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा बेहद चर्चित हुए।
Yes, commonly known as the king of comedy and also the king of satire. In fact, he's known for his satirical take on the problems of the common man. Most famous for his television series Flop Show, Full Tension and even mini capsules like Ulta Pulta that ran on Doordarshan in the late 80s and 90s. His frontal attack on issues like red tapeism, nepotism and corruption was both comic and awakening for the masses. So, hamare paas se ek jhalak hai, hum log jo hai suna dete hain, dikha nahi sakte obviously, to suna dete hain.
जाने माने शराबी जब शरीर छोड़ गए तो उनकी याद में शराबी दोस्तों ने एक शोक सभा का आयोजन किया।
रोशन लाल जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। देसी अंग्रेजी, कच्ची पक्की, असली नकली, हर तरह की शराब हंसते हंसते पी जाते थे।
ठेका खुलते ही आ जाते और ठेका बंद होने तक एक का साथ निभाते।
फेफड़े गल गए जी उनके, लेकिन उन्होंने शराब की बेइज्जती नहीं होने दी।
और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शारदा राजन अयंगर का आज जन्मदिन है। सन 1960 और 1970 के दशक में वो सक्रिय रहीं। 1969 से लेकर 72 तक फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। शारदा को सर्वाधिक रूप से फिल्म सूरज, जो कि 1966 में प्रदर्शित हुई थी, उसके गीत तितली उड़े उड़के चले के लिए पहचाना जाता है और इस गीत से ही उन्हें घर घर में पहचान मिली। तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।
Today is also Aparna Sen's birthday, a director, screenwriter, also an actress who is known for her work mostly in Bengali cinema. She has received several accolades as an actress and filmmaker both, including 9 National Film Awards, 5 Filmfare Awards and 13 Bengal Film Journalists Association Awards. Unki bahut hi khoobsurat si film unhone banayi thi, Mr. and Mrs. Iyer. Let's listen to this song from that film.
Oh, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें AIR आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, और अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे एंड अ ग्रेट वीकेंड।
नमस्कार।